अध्याय 27। कुषाण यूची। यूची जाति पश्चिमी चीन में गोवी प्रदेश में रहती थी। इसी के पड़ोस में एक अन्य जाति रहती थी जो इतिहास में हुंगनू के नाम से प्रसिद्ध है। हुंगनू नरेश लाओसंग ने यूची जाति पर आक्रमण किया और उसके राजा को मार डाला। कहते हैं कि विजेता ने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए मृत यूची नरेश के कपाल का जलपात्र बनवाया। इस पराजय के पश्चात यूची जाति को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा। नए प्रदेश की खोज में इसकी एक शाखा नानशान के पहाड़ी प्रदेश में आई और यहाँ बस गई। यहाँ इसे सियाओ यूची कहा जाने लगा। यूची की दूसरी शाखा सरदरिया के प्रदेश में गई। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यहाँ शक जाति रहती थी। यूची ने शकों को परास्त करके सर प्रदेश पर अपना अधिकार जमाया। यूची की यह शाखा तायूची कहलाई, परंतु यूची सर प्रदेश में अधिक समय तक नहीं रह सके। 140 ईस्वी पूर्व एक अन्य जाति वोशुन के राजकुमार ने हुंगनू की सहायता से यूची पर आक्रमण कर दिया और उसको परास्त कर दिया। यूची को सर प्रदेश में भाग कर ताहिया के में शरण लेनी पड़ी। उसने यहाँ के निवासी शकों को पराजित करके ताहिया में अपना राज्य स्थापित कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्गी यूची जाति 5 शाखाओं में विभक्त हो गई और प्रत्येक शाखा के अधीन एक एक राज्य हो गया। इन राज्यों के नाम इस प्रकार है: ह्यूमी, चौवांगमी, कोई चौंग अथवा कुषाण, हितुम, ताउमी अथवा काउफू। यह विभाजन यूची द्वारा बैक्ट्रिया विजय के पश्चात हुआ था, परंतु ये राज्य बैक्ट्रिया में न थे। मारवा के मतानुसार इन राज्यों की स्थिति इस प्रकार थी: पहला ह्यूमी के वानहान का तात्पर्य है, दूसरा चौवांगशी चित्रात प्रदेश था, तीसरा को चौंग का समीकरण गांधार से किया गया है, चौथा हितून को परमान समझना चाहिए और पांचवा ताउमी के विषय में मतभेद है। संभवतः यह काबुल के समीप कोई प्रदेश था। कुजुल कैडिफिसेस यह उपयुक्त तीसरे राज्य कोई चौवांग अथवा कुषाण का राजा था। चीनी इतिहास ग्रंथों में इसका नाम कियो सियु कियो मिलता है। कुषाण वंश में 2 कैडिफिसेस हुए, अतः इसे कैडिफिसेस प्रथम भी कहा जाता है। यह बड़ा पराक्रमी नरेश सिद्ध हुआ। इसके अन्य चारों राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और राजा की उपाधि धारण की। इस समय के पश्चात हम शेष 4 शाखाओं के नाम नहीं सुनते। यूची जाति के स्थान पर कुषाण जाति का ही उल्लेख होने लगा। पार्थिया की पराजय। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात कुजुल कैडिफिसेस ने अपना राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया। हाउहान तू नामक चीनी इतिहास ग्रंथ के अनुसार उसने आशी पराक्रमण किया और काउफू युता और की पीन पर अधिकार कर लिया। पहले कहा जा चुका है कि पहलवान नरेश के गांडफोनीस की मृत्यु के पश्चात पार्थिया के एक निर्बल राज्य हो गया। इस निर्बलता से लाभ उठाकर कुजुल कैडिफिसस के नेतृत्व में कुषाणों ने पहलवों में अनेक प्रदेश छीन लिए। काबुल घाटी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, काबुल घाटी में हिंद यूनानी नरेश हॉर्मियस का राज्य था। कुछ ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिनके अर्घ भाग पर हॉर्मियस का नाम है और पृष्ठ भाग पर कुजुल कैडिफिसस का। इन मुद्राओं ने विद्वानों में विवाद कर दिया है। पहला टर्न महोदय का मत है कि ये मुद्राएं पाशरार्थ बनवाई गई थी। काबुल घाटी पर अधिकार करने के पश्चात कुजुल कैडिफिसस ने वहाँ की यूनानी जनता को प्रसन्न करने के लिए अपनी मुद्राओं पर यूनानी राजा हॉर्मियस का भी नाम अंकित करा दिया। यद्यपि हॉर्मियस पहले ही मर चुका था, परंतु अधिकांश विद्वान तान किस्मत का विरोध करते हैं। ये विद्वान हॉर्मियस को कुजुल का पुरोगामी नहीं वरन समकालीन मानते हैं। दूसरा, कुछ विद्वान इन सम्मिलित मुद्राओं को कुजुल और हॉर्मियस की प्रगाढ़ मित्रता को द्योतक मानते हैं। इनके मतानुसार कुजुल ने पल्लवों के विरुद्ध हॉर्मिसस की सहायता की थी। इस प्रकार हॉर्मिसस ने यूची की 4 अन्य शाखाओं के विरुद्ध कुजुल की सहायता की थी। मित्र होने के साथ साथ दोनों स्वतंत्र थे। तीसरा, अन्य विद्वान हॉर्मिसस को स्वतंत्र शासक और कुजुल की उसका अधीनस्थ गवर्नर मानते हैं। कुछ समय पश्चात जब हॉर्मिसस की मृत्यु हो गई तो कुजुल ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। यह भी संभव है कि हॉर्मिसस के विरुद्ध विद्रोह करके तथा उसे पराजित करके कुजुल ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की हो। जो भी हो, अदंतोगत्वा काबुल घाटी पर कुजुल कैडिफिसस का अधिकार हो गया और यहाँ ऐसे भी मुद्राएं मिलती हैं जिन पर एकमात्र कुजुल कैडिफिसस का ही नाम है। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कुजुल ने अपने काबुल घाटी हिंद यूनानी नहीं वरन पहलवों से छीनी थी। गंधार। निम्नलिखित साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गंधार भी कुजुल कैडिफिसस के अधीन था। पहला, शिरकप में उसकी मुद्राएं पाई गई हैं। दूसरा, 136 तिथि के तक्षला अभिलेख में किसी भी महाराज आजाधिराज देवपुत्र का उल्लेख है। कुछ विद्वान इसका समीकरण कुजुल कैडिफिसस से करते हैं। कुजुल का राज्य विस्तार। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि कुजुल कैडिफिसस ने एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी जिसके अंतर्गत बैक्ट्रिया, काबुल घाटी, पूर्वी ईरान और गांधार सम्मिलित थे। सारांशतः यह राज्य अक्षस नदी से तक्षला तक फैला हुआ था। उपाधि। इस विशाल राज्य की स्थापना के पश्चात कुजुल कैडिफिसस ने यूची जाति की परंपरागत छोटी उपाधि ही हाउ तथा यवू को छोड़कर महाराज राजाधिराज की उपाधि धारण की। यह उपाधि उसकी मुद्राओं पर मिलती है। बौद्ध धर्मावलंबी। मुद्राओं पर उसे तद्धर्म स्थित कहा गया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह धर्म का तात्पर्य बौद्ध धर्म से है। ऐसी स्थिति में कुजुल बौद्ध धर्मावलंबी प्रतीत होता है। कुजुल की मुद्राएं, कुजुल कैडिफिसस की केवल तांबे की मुद्राएं मिली हैं। ये द्विलिपिक है, अर्थात इन पर यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपियों के लेख उत्कीर्ण है। कुछ विद्वानों पर कुजुल का मुख रोमन नरेश अगस्तस के मुख की शैली पर बनाया गया है। कुजुल की ये मुद्राएं रोमन प्रभाव को सूचित करती हैं। शासनकाल, चीनी ग्रंथों का कथन है कि कुजुल कैटिफिसिस 80 वर्ष की आयु में मरा। उसके शासनकाल की तिथियों के निश्चय के विषय में हमारा ज्ञान अनिश्चित है। 122 तिथि के 75 अभिलेख में किसी कुशान नरेश को महाराज कहा गया है। कुछ विद्वानों ने इस महाराज का समीकरण कुजुल कैटिफिसिस से किया है और 122 तिथि के प्राचीन शक संवत की तिथि माना है। इस प्रकार कुजुल कैटिफिसिस 155 से 122 अर्थात 33 ईस्वी पूर्व तक राज्य करता था। फिम कैटिफिसिस, कुजुल कैटिफिसस की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र विम कैटिफिसस सिंहासन पर बैठा। चीनी साहित्य में इसका उल्लेख येन काओ चेन के नाम से लिया गया है। कुजुल कैटिफिसस और विम कैटिफिसस को क्रमशः कैटिफिसस प्रथम और कैटिफिसस द्वितीय भी कहा जाता है। भारत पर अधिकार, विम कैटिफिसस अपने पिता की भांति ही वीर और महत्वाकांक्षी नरेश था। सर्वप्रथम उसी ने भारत में कुषाण राज्य की स्थापना की। उसकी भारत विजय के संबंध में निम्नलिखित साक्ष्य मिलते हैं। पहला, पंजाब में उसकी मुद्राएं प्राप्त हुई है। दूसरा, उसकी मुद्राएं मथुरा में भी मिली है। तीसरा, चीनी ग्रंथ हाउ हानशु का उल्लेख है कि टीएनचू अर्थात भारत को जीता और वहां अपना गवर्नर नियुक्त किया। इस समय यूचियो की शक्ति बढ़ गई। चौथा, लद्दाख में खलस्ते नामक स्थान पर 187 तिथि का एक लेख मिला है। इसमें इस नरेश का उल्लेख है। पांचवा, मथुरा के निकट माट में राजाधीरा देवपुत्र कुशन पुत्र शही वेम तक्षम की मूर्ति मिली है। इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विम कैटिफिसस के ने गांधार, लद्दाख, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, कुछ विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि विम कैटिफिसस का राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी प्रदेश तक था। तर्क किया है कि विम कैटिफिसस के उत्तराधिकारी कनिष्क के शासनकाल के दूसरे और तीसरे वर्ष के लेख क्रमशः कौशाम्बी और सारनाथ में पाए गए हैं। कनिष्क के शासन के प्रारंभ काल के लेख होने के कारण इन विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि संभवतः प्रयाग और वाराणसी के प्रदेश कनिष्क ने स्वयं नहीं जीते थे, वरन उसने अपने पुरोगामी नरेश विम कैटिफिसस से उत्तराधिकार के रूप में पाए थे। परंतु इस बात के पक्ष में कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है। यही नहीं बक्सर में विम की कुछ मुद्राओं की प्राप्ति के आधार पर कुछ विद्वान यह मत प्रस्तुत करते हैं कि विम ने बिहार तक संपूर्ण उत्तरी भारत जीत लिया था। परंतु एकमात्र कतिपय मुद्राओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उपयुक्त नहीं है। जो भी हो, विम कैटिफिसस ने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी जो पार्थिया की सीमा से लेकर मथुरा तक अवश्य विस्तृत था। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान की अफगान, तुर्किस्तान, बुखारा और रूसी तुर्किस्तान के कुछ भाग सम्मिलित थे। सोटर मेगस, कुछ मुद्राओं पर सोटर मेगस नामक एक कुषाण शासक का नाम अंकित है। यह शासक कौन था, अन्य कुषाण नरेशों के साथ इसका क्या संबंध था, किन परिस्थितियों में इसका उदय और अंत हुआ, ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर अभी तक निश्चित मत नहीं दिया जा सकता। भिन्न भिन्न विद्वानों ने सोटर मेगस का समीकरण भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ किया है। पहला, बेकोफर आदि कुछ विद्वानों का मत है कि विम कैटिफिसस और सोटर मेगस दोनों की मुद्राएं काबुल घाटी से लेकर उत्तर प्रदेश तक पाई जाती हैं। दोनों की मुद्राएं एक सी हैं तथा उन पर अंकित दोनों की उपाधियां भी एक जैसी हैं। अतः विम कैटिफिसस और सोटर मेगस दोनों एक ही व्यक्ति थे। वास्तव में सोटर मेगस विम की उपाधि थी। परंतु इस मत के विरोध में कुछ ठोस तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, यदि विम कैटिफिसस और सोटर मेगस एक ही व्यक्ति के नाम थे तो विम की मुद्राओं पर सोटर मेगस की उपाधि क्यों नहीं मिलती। दूसरा, विम कैटिफिसस ने स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण कराया था, क्या कारण है कि सोटर मेगस की एकमात्र तांबे की ही मुद्राएं मिलती हैं। तीसरा, स्टेनकोन और लोहाइजन नामक विद्वानों के मतानुसार सोटर मेगस विम कैटिफिसस का गवर्नर था। अपने मत की पुष्टि में वे हाउ हानशु नामक ग्रंथ का उल्लेख करते हैं जिसमें यह कहा गया है कि विम ने अपने अधीन भारतीय प्रदेशों पर शासन करने के लिए गवर्नर रखा था। यह गवर्नर सोटर मेगस ही था। परंतु इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि एक अधीन गवर्नर स्वतंत्र रूप से अपनी मुद्राएं कैसे चला सकता था, इन मुद्राओं पर उसके स्वामी का कोई उल्लेख नहीं है। चौथा, कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार सोटर मेगस प्रारंभ के विम कैटिफिसस का गवर्नर ही था, परंतु बाद में उसने अपने स्वामी के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। 136 ईस्वी के तक्षशिला अभिलेख में उल्लिखित महाराजा रजति रजस देव पुत्रम कुशनज का समीकरण इसी सोटर मेगस के साथ करना चाहिए। स्वतंत्र शासक के रूप में इसने अपनी तांबे की मुद्राएं भी चलाई। यदि सोटर मेगस को विम का गवर्नर मान लिया जाए तो भी इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने विम के विरुद्ध विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। उपयुक्त तक्षशिला अभिलेख में सोटर मेगस का नाम नहीं है। अतः महाराजस रजति रजस देव पुत्र मेगस कुशनस का समीकरण सोटर मेगस के साथ करना नितांत काल्पनिक है। प्रकाश, सोटर मेगस आज भी एक ऐतिहासिक पहेली है। कनिष्क प्रथम, मार्शल महोदय का मत है कि विम कैडिफिसिस की मृत्यु के पश्चात कुसार साम्राज्य में कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। इस काल में ही एक अथवा अनेक गवर्नरों ने सोटर मेगस के नाम से भारत में राज्य किया। विम कैडिफिसिस के लगभग 20 वर्ष पश्चात कनिष्क प्रथम का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि कनिष्क और विम में क्या संबंध था। स्टेन कोनो का मत है कि विम यूचियो की बड़ी शाखा का था और कनिष्क उनकी छोटी शाखा का, परंतु यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि चीनी ग्रंथों में कनिष्क को यूचियो की बड़ी शाखा का राजा बताया गया है। कुछ विद्वान कनिष्क को विम का गवर्नर मानते हैं जिसने अपने स्वामी की मृत्यु के पश्चात उसका राज्य संभाला। इसके विरुद्ध कुछ अन्य विद्वान कनिष्क को विम का वंशज बताते हैं। इस मत के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि मथुरा के देवकुल में विम और कनिष्क दोनों की मूर्तियां मिली हैं, अतः संभव है कि वे दोनों एक ही वंश के हों। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि, इसके विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कैंडी और फ्लिट कनिष्क को इसी पर प्रथम शताब्दी में रखते हैं। कैंडी के तर्क प्रकार है। पहला, कनिष्क ने 58 ईस्वी पूर्व चौथी संगति की और इसके उपलक्ष्य में उसे एक वर्ष एक संवत चलाया। दूसरा, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिम के स्थली भागों में चीन और भारत में रेशम का व्यापार होता था। इस व्यापार से जो प्रचुर स्वर्ण प्राप्त हुआ उसी से कनिष्क ने स्वर्ण मुद्राएं निर्मित कराई। तीसरा, वेनसांग का कथन है कि महात्मा बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की थी कि मेरे निर्वाण के 400 वर्ष पश्चात कनिष्क का नाम एक राजा होगा। निर्वाण की तिथि 181 ईस्वी पूर्व है, अतः कनिष्क की तिथि 481 ईस्वी पूर्व हुई। परंतु इन तर्कों में कोई बल नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में कनिष्क के बौद्ध होने और चौथी संगीति करने के उल्लेख मिलते हैं, परंतु कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि इसने इस अवसर पर किसी नवीन संवत की स्थापना की हो। अशोक घोष ने चौथी बौद्ध संगीति में प्रमुख भाग लिया था, किंतु वह भी अपने किसी भी ग्रंथ में संवत स्थापना का उल्लेख नहीं करता। चीन और भारत के बीच होने वाला रेशम का व्यापार कनिष्क के बहुत पहले से ही प्रारंभ हो चुका था। अर्थशास्त्र में भी इस व्यापार का उल्लेख है। पेरिप्लस से प्रकट होता है कि भारत में प्रचुर मात्रा में स्वर्ण ईसा की पहली शताब्दी में आया था, शिपुर पहली शताब्दी में नहीं। वेनसांग का कथन तिथि के विषय में विश्वसनीय नहीं है। फिल्ट महोदय ने भी कनिष्क के सिंहासनारोहण की 58 ईस्वी पूर्व की तिथि के पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। इनका मत था कि कुषाण वंश में कनिष्क पहले हुआ और दोनों कैडिफिसेस उसके बाद। इस विधि से फिल्ट महोदय ने कनिष्क को पीछे ढकेल दोनों कैडिफिसेस कर ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में रख दिया, परंतु इसका मत भी असंगत प्रतीत होता है। हम जानते हैं कि कैडिफिसेस प्रथम की मुद्राएं तांबे की हैं और कैडिफिसेस द्वितीय तथा कनिष्क की मुद्राएं सोने की हैं। कुषाण राज्य में समृद्धि वृद्धि के साथ मुद्राओं का विकास तांबे से सोने की ओर हुआ। अतः यदि हम मान लें कि कनिष्क पहले हुआ और कैडिफिसेस प्रथम बाद को, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुषाण वंश ने पहले सोने की मुद्राएं चलाई, तत्पश्चात उन्हें बंद करके तांबे की मुद्राएं चलाई और उसके पश्चात फिर सोने की। यह क्रम असंभावी है। रैप्सन महोदय का मत है कि अनेक स्थानों पर कनिष्क की मुद्राएं कैडिफिसेस द्वितीय की मुद्राओं के साथ पाई गई हैं, कैडिफिसेस प्रथम की मुद्राओं के साथ नहीं। अतः कनिष्क किसी भी प्रकार के कैडिफिसेस प्रथम का पुरोगामी नहीं हो सकता। तक्षशिला में मार्शल महोदय की खुदाई में कनिष्क काल की मुद्राएं और सामग्री दोनों कैडिफिसेस के कालों के पश्चात की हैं, अतः कनिष्क को दोनों कैडिफिसेस के बाद ही समझना चाहिए। एलन महोदय का कथन है कि कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं रोम सम्राट टाइटस की मुद्राओं से मिलती जुलती हैं, अतः कनिष्क ईशापुर प्रथम शताब्दी में नहीं रखा जा सकता। उपयुक्त प्रमाणों से यही प्रकट होता है कि 58 ईस्वी पूर्व कनिष्क का राज्यारोहण नहीं हो सकता था। डॉक्टर रमेश चंद मजुमदार ने कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि 248 ईस्वी माना था और इस मत का प्रतिपादन किया था कि इस वर्ष उसने एक नवीन संवत की स्थापना की थी जो इतिहास में त्रैकुटक कलचुरी चेरी संवत के नाम से प्रख्यात हुआ, परंतु मजुमदार का मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहला, हम जानते हैं कि कनिष्क सिंहासनारोहण की तिथि के पश्चात लगभग 100वें वर्ष में वासुदेव मथुरा पर राज्य कर रहा था। अतः यदि कनिष्क सिंहासनारोहण की तिथि 248 ईस्वी है तो मथुरा में वासुदेव का राज्य 348 ईस्वी में था, परंतु हम जानते हैं कि 348 में मथुरा के ऊपर कुषाण वंश का आधिपत्य न था। 248 ईस्वी को कनिष्क सिंहासनारोहण की तिथि मानना असंगत है। दूसरा, तिब्बती साक्ष्य से प्रकट होता है कि कनिष्क खोतान के विजयकृति का समकालीन था, परंतु विजयकृति 248 ईस्वी के बहुत पूर्व हुआ था। तीसरा, चीनी त्रिपिटक से प्रकट होता है कि आंशी काउ ने संघर्ष के मार्ग भूमि सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। संघर्ष कनिष्क का समकालीन था। इससे प्रकट होता है कि कनिष्क 170 ईस्वी के पूर्व हुआ होगा, पश्चात नहीं। आज ही भंडारकर 278 ईस्वी को कनिष्क सिंहासनारोहण की तिथि माना था, किंतु जो तर्क 248 ईस्वी के विपक्ष में है वही 278 ईस्वी के विपक्ष में थी। में भी अंतिम प्रमुख मत टॉम्स रैप्सन और राखल दास बनर्जी आदि विद्वानों का है, परंतु दुब्री या महोदय ने इस मत को अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। कैडिफिसस प्रथम ने 50 ईस्वी के लगभग राज्य किया था। यदि हम कनिष्क से आसनारोहण की तिथि 48वीं मान लें तो कैडिफिसस प्रथम अद्वितीय के राज्यकालों के लिए केवल 28 वर्ष रहते हैं। परंतु इस तर्क में कोई बल नहीं है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कैडिफिसस प्रथम 50वीं में ही राज्य कर रहा था। पुनः 28 का काल दो राजाओं के लिए बहुत कम नहीं है। हम यह भी जानते हैं कैडिफिसस प्रथम 80 वर्ष की आयु में मरा था। अतः स्पष्ट है कि सिंहासन पर बैठने के समय कैडिफिसस द्वितीय की आयु काफी बड़ी हो गई होगी और उसने अल्पकाल तक ही शासन किया हो। दूसरा, मार्शल ने तक्षशिला में चीर स्तूप अभिलेख का पता लगाया है। इसमें 136 तिथि दी हुई है। संभवतः तिथि विक्रम संवत की है। अतः इस अभिलेख का निर्माण 78-89 ईस्वी में हुआ था। डुब्रिया महोदय का मत है कि इस अभिलेख का निर्माण कैडिफिसस द्वितीय के समय में हुआ था, कनिष्क के समय नहीं। अतः कनिष्क की तिथि 78 ईस्वी नहीं हो सकती। परंतु हम इस तर्क में भी कोई बल नहीं है। चीर स्तूप अभिलेख में कुषाण राजा के लिए देवपुत्र उपाधि का प्रयोग किया गया है। यह उपाधि कभी भी कैडिफिसस राजाओं ने धारण नहीं की थी। इसका प्रयोग कनिष्क और उसके उत्तराधिकारी ने ही किया था। इसलिए उपयुक्त अभिलेख में कैडिफिसस द्वितीय के समय का नहीं हो सकता। इन समस्त बातों को देखते हुए यही मानना अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता है कि कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि 78 ईस्वी थी। इस मत के पक्ष में लिखित मत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, चीनी साहित्य के इस मत का अनुमान लगाया जा सकता है कि कनिष्क 78 ईस्वी के लगभग ही सिंहासन पर बैठा। दूसरा, कुषाण राजाओं की निम्नलिखित तिथियां उसके अभिलेख में ज्ञात होती हैं। कनिष्क 11 से 23 तक, वार्षिक 24 से 28 तक, विश्क 28 से 60 तक, वासुदेव प्रथम 64 से 98 तक। इन तिथियों का एक क्रम और ये भी किसी संवत की तिथियों से है जिसे कनिष्क ने प्रारंभ किया था। यह 89 ईस्वी का शक संवत है जिसे कनिष्क ने प्रयुक्त किया था। अतः यह 89 ईस्वी में ही सिंहासन पर बैठा होगा। तीसरा, मार्शल ने तक्षशिला में जो खुदाई की थी उससे सिद्ध हो गया था कि कनिष्क दोनों कैडिफिसस के पश्चात ही सिंहासन पर बैठा। दोनों कैडिफिसस का शासन प्रथम शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। कनिष्क के प्रथम शताब्दी में ही रखा जा सकता है, इसके पश्चात नहीं। कालीन चार साम्राज्य। कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जो चीनी तुर्किस्तान से लेकर पूर्व में कम से कम सारनाथ तक विस्तृत था। इस कुषाण साम्राज्य के साथ साथ तत्कालीन संसार में तीन अन्य साम्राज्य थे, पार्थिया साम्राज्य, चीनी साम्राज्य और रोम साम्राज्य। प्रथम दो के साथ कनिष्क के संबंध पूर्ण थे, परंतु तीसरे के साथ मित्रतापूर्ण। पार्थिया से युद्ध। पार्थिया साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य की सीमा एक दूसरे से मिली हुई थी। पार्थिया का एरियान प्रदेश इस समय कुषाणों के अधिकार में था। स्वाभाविक है कि पार्थिया अपने इस प्रदेश को पुनः हस्तागत करने का अवसर खोज रहा होगा। शत्रुता का दूसरा कारण व्यापारिक था। व्यापारिक दृष्टिकोण से बैक्ट्रिया की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ से भारत, मध्य एशिया, चीन आदि को व्यापारिक मार्ग जाते थे। बैक्ट्रिया के ऊपर कनिष्क का अधिकार था। यहाँ से जाने वाले व्यापारी मार्गों पर भी इसका प्रभाव था। यह प्रभाव पार्थिया को खलता था। अपनी समृद्धि के लिए यह मध्य एशिया के व्यापारिक मार्गों को अपने प्रभाव में लेना चाहता था। इन दोनों कारणों से पार्थिया और कनिष्क का युद्ध हुआ। इसका साक्ष्य हमें चीनी साहित्य से मिलता है। चीनी साहित्य का कथन है कि नामशी के राजा ने देवपुत्र कनिष्क पर आक्रमण कर दिया, परंतु इस युद्ध से उसे सफलता नहीं मिली। कनिष्क ने उसे परास्त कर दिया। नामशी का समीकरण पार्थिया से किया जाता है। चीन से युद्ध। जिस समय भारत में कनिष्क राज्य कर रहा था उस समय चीन में हान वंश का राज्य था। वह बड़ा शक्तिशाली और साम्राज्यवादी राजवंश था। इसके सेनापति पान चाओ ने खोतान, काशगर, कूचा, कारा शहर आदि को जीतकर संपूर्ण चीनी तुर्किस्तान को चीनी अधिकार में कर लिया था। अब उसने साम्राज्य की सीमा कनिष्क साम्राज्य के कश्मीर प्रांत की सीमा को छूने लगी थी। चीनियों की साम्राज्यवादी नीति से भारत के कुषाण साम्राज्य के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो गया था। अतः कनिष्क ने उसे रोकने का निश्चय किया। चीनी तुर्किस्तान को लेकर चीन साम्राज्य कुषाण साम्राज्य के बीच झगड़ा पहले से ही चल रहा था। चीनी ग्रंथों का कथन है कि 73 ईस्वी में पान चाओ ने काशगर की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप किया और उसके राजा को सिंहासन से उतार कर अपने समर्थक को वहाँ पर राजा बनाया। सिंहासन च्युत राजा ने यूची राजा से सहायता मांगी, परंतु उसे सहायता प्राप्त न हो सकी क्योंकि पान चाओ ने यूची राजा को बहुमूल्य उपहार देकर संतुष्ट कर दिया और उसे चीनी तुर्किस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप न करने दिया। चीनी ग्रंथों में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ काल पश्चात कनिष्क ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित कदम उठाया। उसने चीनी सम्राट के समक्ष अपनी समानता स्थापित करने के लिए यह प्रस्ताव रखा कि चीनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया जाए, परंतु चीनी सेनापति पान चाओ ने इस प्रस्ताव को अपने सम्राट के लिए अपमानजनक समझा और कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। इस सूचना को पाते ही कनिष्क ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उस पर आक्रमण के लिए 70,000 अश्वारोही को भेजा, परंतु सीत और पर्वती मार्ग की कठिनाइयों के कारण सेना का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया। छत्रविछत अवस्था में जब वह खोतान पहुंची तो उसे पान चाओ ने हरा दिया। इस पराजय के पश्चात कनिष्क को प्रतिवर्ष चीन को कर देने का वचन देना पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि कनिष्क के दूसरे आक्रमण पर और उसकी विजय का वर्णन एकमात्र मेनसांग ने ही किया है। उसके अनेक विद्वान इस वर्णन को विश्वसनीय नहीं मानते। उदाहरण के लिए टॉम्स मॉले का कथन है कि कनिष्क ने चीनी सम्राट सम्राट को पराजित नहीं किया था और न चीन सम्राट ने अपने पुत्रों को उसके पास बंधक के रूप में रखा था। पीली नदी के पश्चिम में रहने वाली जातियों का अर्थ तारीम प्रदेश के राजाओं से है। ये राजा चीनी सम्राट की साम्राज्यवादी नीति से भयभीत थे, उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरा था, तब वे स्वयं कनिष्क के संरक्षण में आ गए थे। रोम साम्राज्य से संबंध, इस समय रोम साम्राज्य और पार्थिया साम्राज्य के बीच शत्रुता थी। पार्थिया कुषाण साम्राज्य का भी शत्रु था, अतः स्वाभाविक था कि उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध रोम साम्राज्य और पार्थिया साम्राज्य के बीच मित्रता होती। कुषाण काल में भारत और रोम के बीच व्यापारिक एवं कूटनीतिक संबंध बढ़े। दोनों ने एक दूसरे की राजसभा में अपने दूत भेजे। कनिष्क का साम्राज्य विस्तार। कनिष्क एक महान विजेता साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने शौर्य से न केवल अपने पुरोगामी से प्राप्त राज्य की रक्षा की, वरन उसका विस्तार भी किया। यहां हम उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसके साम्राज्य की सीमाएं निश्चित करने की चेष्टा करेंगे। मध्य एशिया वेनसंग के विवरण से प्रकट होता है कि मध्य एशिया में उसका साम्राज्य यारकंद, कोताल और काशगर तक विस्तृत था। बैक्ट्रिया कुलूज कैडिफिसस के समय से कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत था, अतः कनिष्क ने सूत्राधिकार के रूप में भीम कैडिफिसस से प्राप्त किया था। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बैक्ट्रिया कनिष्क के हाथ से निकल गया था। यही ने बैक्ट्रिया पर कनिष्क के आधिपत्य के कुछ निश्चित प्रमाण भी मिले हैं। उदाहरणार्थ कोताल में एक पांडुलिपि मिली है जिसमें चंद्र कनिष्क को बहलक का राजा कहा गया है। चंद्र कनिष्क का समीकरण कनिष्क से और बहलक का समीकरण बैक्ट्रिया से किया गया है। अफगानिस्तान काबुल अभिलेख से ज्ञात होता है कि अफगानिस्तान के कम से कम कुछ भाग पर विश्व का अधिकार था। अनुमान है कि अफगानिस्तान की विजय स्वयं विश्व ने ही की होगी। यह प्रदेश कनिष्क के समय से ही कुषाण साम्राज्य में चला आ रहा था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, इस प्रदेश पर भी कनिष्क का आधिपत्य था। इसी प्रदेश में स्थित नगर पुरुषपुर कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी थी। गांधार वेनसांग के विवरण और चीनी ग्रंथों से प्रकट होता है कि गांधार कनिष्क के अधीन था। यह उस समय का कला का प्रख्यात केंद्र था। उसी के नाम पर तत्कालीन एक विशिष्ट कला प्रणाली का नाम गांधार कला पड़ा। इस कला की अनेक कृतियां भी गांधार में पाई गई हैं। कश्मीर रात तरंगणी से सिद्ध होता है कि कश्मीर में भी कनिष्क के साम्राज्य में था। यहाँ उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। यही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कश्मीर में कनिष्क के कनिष्कपुर नामक एक नगर की भी स्थापना की थी। सिंध बिहार अभिलेख से प्रकट होता है कि सिंध कनिष्क के अधीन था। पंजाब जेदा अभिलेख और मणिक्याल अभिलेख से पंजाब पर भी कनिष्क का अधिकार प्रकट होता है। टालमी का कथन है कि पूर्वी पंजाब पर कुषाणों का शासन था। यह उल्लेख संभवतः कनिष्क पर लागू होता है। उत्तर प्रदेश अनेक साक्ष्यों के कनिष्क का अधिकार उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न भूखंडों पर सिद्ध होता है। पहला मुद्राएं, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और गोरखपुर तक कनिष्क की मुद्राएं मिली हैं। दूसरा अभिलेख, कनिष्क के अभिलेख कौशाम्बी सानात और श्रावस्ती में मिले हैं। तीसरा मूर्तियां, कनिष्क कालीन मूर्तियां भी मथुरा कौशाम्बी सानात और श्रावस्ती आदि स्थानों में मिली हैं। चौथा जनश्रुति, तिब्बती ग्रंथों से विदित होता है कनिष्क के सोकेत अर्थात साकेत अयोध्या के राजा को पराजित किया था। इन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग कनिष्क के अधीन था, परंतु निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश के किस भाग तक उसका अधिकार था। मुद्राएं, मूर्तियां, यात्रियों, व्यापारियों और संदेह और कलाकार द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती हैं, अतः इनका साक्ष्य संदेहपूर्ण हो सकता है। परंतु कनिष्क का अभिलेख सारनाथ में मिला है, अतः इसका निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में उसका साम्राज्य सारनाथ तक अवश्य विस्तृत था। बिहार कुछ मुद्रा एकमात्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश को ही नहीं वरन बिहार को भी कनिष्क के अधीन मानते हैं। अपने पक्ष में भी निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला, मुद्राएं, बिहार में कनिष्क की मुद्राएं मिली हैं। दूसरा, जनश्रुति, धर्मपिटक संप्रदाय निदान सूत्र का कथन है कि देवपुत्र ने होवाचू पर आक्रमण करके उसके राजा को पराजित किया था, तो उसके 100,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी। राजा ने मुद्राओं के स्थान पर कनिष्क को महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र दे दिया था। इसी प्रकार कल्पनामंडितिका के चीनी अनुवाद से प्रकट होता है कि कनिष्क ने तुंग तीन चाउ पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पूर्वी भारत में संभवतः बिहार भी आता है, परंतु कतिपय मुद्राओं और जनश्रुतियों का साक्ष्य संदेहपूर्ण भी कहा जा सकता है। बंगाल में कनिष्क की एक तथा उसके एक वंशज वासुदेव प्रथम की कुछ मुद्राएं मिली हैं, परंतु एकमात्र कुछ मुद्राओं के आधार पर ही बंगाल पर कनिष्क का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। उड़ीसा, कुछ विद्वान जो आधारों पर उड़ीसा पर कनिष्क का अधिकार सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। पहला, उड़ीसा में कुषाण की कुछ मुद्राएं मिली है। दूसरा, डॉक्टर राखल दास बनर्जी का मत है कि कुछ विद्वानों में उड़ीसा पर किसी प्राचीन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। संभवता है कि यह आक्रमण कनिष्क ने किया हो, परंतु ये दोनों साक्ष्य निर्बल है। उड़ीसा में कुषाणों की कुछ मुद्राएं व्यापारियों तथा यात्रियों द्वारा भी आ सकती थी। ये रही कुछ ग्रंथों की बात, तो वे बहुत बाद के हैं। उनका संकलन मुगल काल में ही किया गया था। इतने बाद में ग्रंथ कुषाण काल के इतिहास के लिए निश्चित साक्ष्य नहीं माने जा सकते। मध्य प्रदेश, कुछ साक्ष्यों के आधार पर कभी कभी यह मत भी प्रतिपादित किया गया है कि मध्य प्रदेश भी कनिष्क के अधीन था। पहला, मध्य प्रदेश में बिलासपुर तथा कुछ अन्य स्थानों पर कनिष्क उसके उत्तराधिकारी की कुछ मुद्राएं मिली हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में सांची नामक स्थान पर कुछ ऐसी मुद्राएं मिली हैं जो मथुरा शैली की हैं तथा जिन पर कुषाण राजाओं के नाम भी उत्कीर्ण हैं, परंतु ये साक्ष्य भी निर्णायक नहीं हो सकते। मुद्राएं मूर्तियां दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती हैं। पश्चिमी भारत, कुछ विद्वानों का मत है कि महाराष्ट्र का छहरात वंश और गुजरात काठियावाड़ का चस्टन वंश कुषाणों की अधीनता में ही राज्य करते थे, परंतु इस मत को स्वीकार करने में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। पहला, इन दोनों वंशों के राजा अपनी मुद्राओं और लेखों में कहीं पर भी कुषाणों का उल्लेख नहीं करते, जिससे सिद्ध होता है कि दोनों वंश स्वतंत्र थे। दूसरा, इन दोनों वंशों के राजाओं ने अपना नाम से मुद्राएं निर्मित कराई जो उनकी भविष्यता की सूचना देती है। तीसरा, इन वंशों में के राज्य में कुषाण मुद्राओं का प्रसार न था। चौथा, कुषाण अभिलेखों में इन वंशों का उल्लेख नहीं है। पांचवा, कोई अन्य देशी तथा विदेशी साक्ष्य भी इन वंशों को कुषाणों के अधीन नहीं बताता। विवेचन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कनिष्क का राज्य मध्य एशिया के सारनाथ तक अवश्य विस्तृत था। विशाल साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। छत्रप प्रणाली, सारनाथ अभिलेख के कनिष्क के मां छत्रप खरपल्लान और छत्रप वंश पर के नाम विदित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शकों की भांति कनिष्क ने भी अपने विशाल साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में मां छत्रप के शासन की व्यवस्था की थी। डॉक्टर स्मिथ का मत है कि महाराष्ट्र के छहरात वंश नरेश नहापान और उज्जैन का छत्रप चष्टन कनिष्क के गवर्नर थे, परंतु यह मत असंगत प्रतीत होता है। कनिष्क का बौद्ध होना कनिष्क के प्रसिद्ध विजेता की अपेक्षा बौद्ध प्रचारक के रूप में अधिक है। संयुक्त रत्न पीटक के अनुसार प्रारंभ में कनिष्क रक्त पिपासु नर पिचास था, परंतु बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उसमें आमूल परिवर्तन हो गया था। राज कनिष्क लेख में मातुचेत कनिष्क को हिंसा प्रधान जीवन का परित्याग करने की सलाह देता है। अन्य बौद्ध धर्मग्रंथ कनिष्क के प्रारंभिक जीवन के अत्याचारों और अतिथियों का उल्लेख करते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करने के समय वह प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशुघोष के संपर्क में आया और कुछ समय के पश्चात बौद्ध हो गया तथा बौद्ध धर्म के प्रभाव में अंतर्गत उसने दीर्घी साधुता ग्रहण कर ली थी। कनिष्क के बहुत संख्यक मुद्राएं मिली हैं। प्रथम कोटि की मुद्राओं में यूनानी देवताओं सूर्य और चंद्रमा के चित्र अंकित हैं। इस कोटि की मुद्राएं पर यूनानी देवता अग्नि का चित्र है। अंतिम कोटि की मुद्राओं पर महात्मा बुद्ध का चित्र है। कुछ विद्वानों इस मुद्रा क्रम में कनिष्क का धर्म परिवर्तन देखते हैं। अन्य विद्वानों का मत है कि कनिष्क सभी धर्मों के प्रति उदार था, यूनानी ईरानी और भारतीय देवी देवताओं के साथ ही साथ उपासना करता था। कुछ विद्वानों का कथन है कि मुद्राएं कनिष्क साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रतिष्ठित भिन्न भिन्न धर्मों की सूचना देता है। जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि कनिष्क का व्यक्ति तात धर्म बौद्ध था। पहला समस्त बौद्ध ग्रंथ इस बात के प्रमाण है कि उदाहरण के लिए सूत्रालंकार में लिखा हुआ है कि किया नीचा की अनुरक्ति एकमात्र बौद्ध धर्म थी। धर्म पिटक निदान सूत्र भी कनिष्क का बौद्ध कहता है, कनिष्क को बौद्ध कहता है। दूसरा, समस्त बौद्ध ग्रंथ कनिष्क और बौद्ध विद्वान अशुघोष में संबंध स्थापित करते हैं। तीसरा, राजा तरंगिणी का कथन है कि कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और उसने अनेक बौद्ध विहार बनवाए थे। चौथा, सारनाथ भी कनिष्क को बौद्ध एवं बौद्ध प्रचारक बताता है। पांचवा, मेनसांग का कथन है कि महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे निर्माण के 400 वर्ष पश्चात कनिष्क राजा होगा और बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। छठवां, कनिष्क ने अपने राज्य में अनेक स्थानों पर बहुत संख्यक विहार बनवाए थे। पुरुषपुर में उसने 400 फीट ऊंचा 13 मंजिल का एक टावर बनवाया था और उसी के निकट एक संघाराम पायान तथा हेमशांग ने देखा था। अलबरूनी ने भी कनिष्क के नाम से इसका उल्लेख किया है। सातवां, पेशावर कास्केट अभिलेख से भी प्रकट होता है कि कनिष्क बौद्ध था। अठारह के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है उसका थी बौद्ध संगीति करना। चौथी, बौद्ध संगीति। बौद्ध जनश्रुति के अनुसार बौद्ध धर्म संप्रदाय के परस्पर विद्युत सिद्धांतों से व्यग्र होकर कनिष्क ने बौद्ध संगीति बुलाई है। चौथी बौद्ध संगीति थी, इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। मंगोलिया के बौद्ध साक्ष्य के अनुसार संगीति जालंधर में हुई थी। तिब्बती लेखक तारानाथ का कथन है कि कुछ विद्वानों के अनुसार यह संगीति कश्मीर में हुई थी, किंतु कुछ अन्य विद्वानों ने के अनुसार कश्मीर में, परंतु कश्मीर को ही संगीति स्थान मानना बहुत न्यायसंगत लगता है। वेनसांग जालंधर गया था, परंतु उसने उसे संगीति स्थान नहीं बताया। अपेक्षाकृत परामर्श का स्पष्ट कथन है कि अपेक्षाकृत परमार्थ का स्पष्ट कथन है कि बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, यद्यपि संबंध में उसने कनिष्क का नाम नहीं लिया है। ताकाशुक महोदय भी समस्त साक्ष्यों की विवेचना के पश्चात कश्मीर को ही चौथी बौद्ध संगीति का स्थान बताते हैं। पहली महाकाव्य चौथी बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं करते। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने इसकी ऐतिहासिकता में विश्वास नहीं करते, किंतु उसका मत न्याय मत असंगत है। जब समस्त उत्तरी भारतवर्ष चीन मंगोलिया और तिब्बत के बौद्ध साक्ष्य इसका सविस्तार वर्णन करते हैं, तो फिर इसकी ऐतिहासिकता में विश्वास न करने का कोई कारण नहीं रह जाता। यह संगति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें सम्मिलित होने के लिए अशुघोष साकेत से विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस संगति ने बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी थी जो विभाषा कहलाती है। ये टीकाएं ताम्रपत्रों पर लिखी गई हैं और एक विशेष रूप में निर्मित स्तूप में संरक्षित कर दी गई। महायान का उदय, प्रारंभ में बौद्ध महात्मा बुद्ध को एकमात्र महापुरुष समझते थे, ईश्वर का अवतार नहीं। इनकी मूर्ति पूजा भी न होती थी। यही कारण है कि भरहूत साची आदि स्तूप में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां नहीं मिलती। इनका अस्तित्व एकमात्र कुछ प्रतीकों से दिखाया गया है, जैसे धर्मचक्र स्तूप, पादुका, बोधिवृक्ष आदि। निर्वाण प्राप्त करने का एकमात्र साधन व्यक्तिगत प्रधान था। महात्मा बुद्ध के प्रति भक्ति नहीं बौद्ध धर्म की आधारशिला प्रज्ञा थी, करुणा नहीं। परंतु महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने लगे। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, उनके ज्ञान प्राप्त करने का स्थान बौद्ध गया, उनके धर्म चक्र प्रवर्तन का स्थान सारनाथ और उनके निर्वाण प्राप्त करने का स्थान कुशीनगर बौद्ध संसार के तीर्थ बन गए। धीरे धीरे लोग महात्मा बुद्ध के मानवीय रूप को भूलने लगे और उनके दैवी रूप की कल्पना करने लगे। इस नवीन विचारधारा के अनुसार महात्मा बुद्ध को अवतार माना गया। वे सृष्टिकर्ता, भक्तवत्सल और उद्धारक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अब बौद्धों को एकमात्र अपने प्रयास पर निर्भर नहीं रहना था, उन्हें असीम भक्ति भाव के साथ महात्मा बुद्ध के शरण में आना था। महात्मा बुद्ध नितांत करुणामय है, वे ही मनुष्य का उद्धार करेंगे। इस प्रकार बौद्ध धर्म में भक्ति के तत्व आ गए और बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे। बौद्ध धर्म का यही परिवर्तन रूप इतिहास में महायान के नाम से प्रख्यात हुआ। महायानियों ने पुरातन संप्रदाय को हीनयान कहना प्रारंभ किया। महायान का उदय ईसा की प्रथम शताब्दी में हो गया था। महायान के उदय के अनेक कारण बताए जा सकते हैं। पहला, महात्मा बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा। बौद्ध अनुयायी महात्मा बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा और आदर की भावना रखते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात यही आदर भाव भक्ति भाव में परिवर्तित हो गया, परिणामतः महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा भी होने लगी। दूसरा, भागवत धर्म का प्रभाव। विटरनीस, कर्ण आदि विद्वानों का मत है कि भागवत धर्म के भक्ति मार्ग ने बौद्ध धर्म को बड़ा प्रभावित किया। इसी प्रभाव के अंतर्गत बौद्ध धर्म में भक्ति के तत्व आग मिले। कालांतर में महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म में वही पद प्रदान किया गया जो भागवत धर्म में श्री कृष्ण का है। भगवत गीता की भांति बौद्धों ने भक्ति प्रधान सद्धर्म पुंडरीकाक्ष की रचना की और महात्मा बुद्ध को अपना करुणामय उद्धारक माना। तीसरा, जैन धर्म का प्रभाव। जैन धर्मावलंबियों ने अपने तीर्थकरों की मूर्ति पूजा पहले से प्रारंभ कर दी थी, अतः यह संभव है कि जैन धर्म में भी बौद्ध धर्म में भक्ति अवतार और मूर्ति पूजा के तत्वों के लाने में सहायता दी हो। चौथा, विदेशों का प्रभाव। डॉक्टर स्मिथ का मत है कि बौद्ध धर्म विदेशों में पहुंचा तो उस पर विदेशी धर्म का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म को विशेष रूप से मध्य एशिया और ईरान की धार्मिक आस्थाओं ने बड़ा प्रभावित किया। इसी प्रभाव के अंतर्गत बौद्ध धर्म में महायान का उदय हुआ। पांचवा, विदेशी आगंतुकों का प्रभाव। भारत पर अनेक विदेशी जातियों के आक्रमण होते रहे, इनमें से अनेक जातियों भारत में ही बस गयी। बहुत से विदेशी आगंतुकों ने बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया। रॉलिंस महोदय का मत है कि इस विदेशी बौद्ध धर्मावलंबियों ने धीरे धीरे अपनी अनेकानेक मान्यताओं को भी बौद्ध धर्म में प्रविष्ट करा दिया। नामस्वरूप विदेशी तत्वों से मिलकर बौद्ध धर्म का मूल रूप से परिवर्तन हो गया। उदाहरणार्थ, हिंदू यूनानियों ने भारत पर लगभग 150 वर्ष तक राज्य किया। उनकी विचारधारा और भारतीय विचारधारा के सम्मिश्रण से ही गांधार शैली का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार विदेशी जातियों को पूजा पाठ, लोक विश्वास आदि भी बौद्ध धर्म में आत्मसात हो गए। छठवां, ईसाई धर्म का प्रभाव। अनेक विद्वानों का यह मत है कि बौद्ध धर्म ने भक्ति और करुणा के सिद्धांतों को ईसाई धर्म में ग्रहण किया था, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। महायान शब्द सर्वप्रथम कनिष्क के समय में ही व्यवहित हुआ था, यद्यपि उसका बीज रूप महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में ही अंतर्निहित था। इस नई विचारधारा ने महात्मा बुद्ध और अन्य बौद्धिस्तों को देवरूप दे दिया। महात्मा बुद्ध के प्रति भक्ति और राग अब मोक्ष के सर्व सुगम और सर्वश्रेष्ठ साधन बन गए। परिणामतः महायान भक्तिवादी, अवतारवादी और मूर्तिवादी बन गया। उसने प्राचीन हीनयान से अपनी सत्ता पृथक करने के लिए अपने नवीन सूत्रों की रचना की। प्राचीन परंपरागत पाली का परित्याग कर महायानियों ने अपने धर्म ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में करना प्रारंभ किया। इन सब परिवर्तनों से महायान हीनयान की अपेक्षा अधिक उदार और लोकप्रिय बन गया। हीनयान का आधार दार्शनिक था और न्यूनाधिक मात्रा में अपरिवर्तनशील था। हीनयान के अनुयायी महायान को भी धर्म समझने लगे। कुछ लोग उसे बौद्ध धर्म का विकृत रूप कहने लगे, परंतु ये कथन अत्युक्तिपूर्ण है। यदि हम विचार करें तो ज्ञात होगा कि दोनों शाखाओं में आमूल सैद्धांतिक भेद नहीं है, भेद है केवल दृष्टिकोणों का। महायान अनुयायियों भी अपने धर्म का आधार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। वे भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को चिरसत्य समझते थे। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को इति नहीं समझा, उन्होंने उन उपदेशों को बीज रूप में ग्रहण किया और कालांतर में उन्हें अंकुरित और पल्लवित किया। अपने अपरिवर्तनशील दृष्टिकोण के कारण हीनयान अनुयायियों ने अपने धर्म को इत्यात्मक बना दिया, जबकि महायानियों के लिए उनका धर्म चिर विकासात्मक रहा। निरस दार्शनिक हीनयान से हटकर उन्होंने बौद्ध धर्म के एक ऐसे रूप का सृजन किया जो लौकिक मनोवृत्तियों का सम्यक रूप से रंजन कर सके। यही कारण है कि उन्होंने अपने धर्म में बोधिसत्वों के कथानकों को स्थान दिया। कुछ विद्वानों ने महायान को बोधिसत्वों का धर्म कहा है। हीनयान और महायान का अंतर। पहला, हीनयान केवल महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर अवलंबित है, परंतु महायान ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक बुद्ध और बोधिसत्व की शिक्षाओं का भी समावेश कर लिया है। दूसरा, हीनयान की इकाई व्यक्ति है, इसका लक्ष्य व्यक्ति विशेष को मुक्ति दिलाना है, परंतु महायान अधिक विस्तृत और उदार है, इसकी इकाई समस्त विश्व है और इसका लक्ष्य समस्त विश्व की मुक्ति है। तीसरा, हीनयान प्रमुखता दर्शन है और महायान प्रमुखता धर्म। चौथा, हीनयान में महात्मा बुद्ध एक महापुरुष है, परंतु महायान में वे सर्वशक्तिमान देव है। उदाहरण के लिए, महायान धर्म के सर्वधर्म पुनरिक में वे स्वयं कहते हैं, मैं संपूर्ण सृष्टि का जन्मदाता हूँ, भीषक हूँ और सारे प्राणियों का संरक्षक हूँ। पांचवा, हीनयान के सिद्धांत अधिक कठोर है, वेष्टांग मार्ग आदि के द्वारा मोक्ष को प्राप्य बताता है, परंतु महायान अधिक सुगम है। अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए उसने महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रदर्शन के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्य बताया। छठवा, हीनयानियों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने सभी अनुयायियों को एक ही प्रकार के उपदेश दिए थे, परंतु महायानियों का मत है कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों की योग्यता को दृष्टि में रखकर दो प्रकार के उपदेश दिए थे। प्रकट उपदेश साधारण कोटि के शिष्यों के लिए था और गृह गुह उपदेश केवल अधिक उपयुक्त शिष्यों के लिए। सातवां, हीनयान का लक्ष्य अरहत पद की प्राप्ति था। अरहत उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी इच्छाओं का दमन करके जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और निर्वाण प्राप्त कर लेता है, परंतु निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात वे अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करता। महायानियों के अनुसार हीनयानियों के अरहत का दृष्टिकोण नितांत स्वार्थपूर्ण है, अतः महायान ने अरहत के स्थान पर बोधिसत्व को अपना आदर्श माना। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु वह निर्वाण को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करता कि उसे अन्य मनुष्यों के निर्वाण के लिए भी प्रयत्न करना है। वह मोक्ष प्राप्त करने के निष्क्रिय नहीं होना चाहता, पर उपकार के लिए वह स्वार्थ को भी भूल जाता है और मोक्ष का अधिकारी होते हुए भी वह मोक्ष को स्वीकार नहीं करता। आठवां, हीनयान ने प्रज्ञा को प्रमुख स्थान दिया है। उसके अनुसार व्यक्ति को अपने प्रधान से प्रज्ञा प्राप्त करना है। महायान प्रज्ञा की अपेक्षा करुणा को अधिक महत्व देता है। महात्मा बुद्ध की करुणा ही अत्यंत गत्वा मनुष्य का उद्धार करेगी। हमें उन्हीं की शरण में जाना है। नौवां, कुछ विद्वानों का मत है कि हीनयान ने संन्यास्त जीवन को अधिक महत्व दिया है और महायान के गृहस्थ जीवन को। यह महत्व की बात है तो अधिकांश महायानी आचार्य गृहस्थ थे। विद्या प्रेम, कलिश के भारतीय इतिहास का एक महान विद्या प्रेमी सम्राट था। उसे अपने राज्यसभा में विद्या अनुरागियों को आश्रय देकर भारतीय विद्वानों के विकास में भारी योग दिया। उसके समय का प्रसिद्ध विद्वान अशोकघोष अपनी कृतियों के लिए संसार प्रसिद्ध है। ऐसी बौद्ध जनश्रुति है कि कनिष्क ने उसे पाटलिपुत्र से लाया था। वह कवि, दार्शनिक, उपदेशक और नाटककार था। उसका बनाया हुआ महाकाव्य बुद्धचर्य संस्कृत साहित्य में अमूल्य निधि है। अनेक विद्वानों का मत है कि इस महाकाव्य में महाकवि कालिदास की रचनाओं के ऊपर काफी प्रभाव डाला है। बुद्ध चरित में 17 सर्ग हैं। महात्मा बुद्ध का चरित्र शिक्षाएं वर्णित है। भारतवर्ष में प्राप्त बुद्ध चरित्र के अंतिम 4 सर्ग चीनी प्रति में नहीं मिलते। अशोकघोष का दूसरा काव्य सौंदरानंद है। इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई नंद का बौद्ध धर्म में दीक्षित होना वर्णित है। सारिपुत्र प्रकरण अशोकघोष का नाटक है। इसमें 9 अंक हैं। यह नाटक संस्कृत नाट्यशास्त्र के नियमों के अनुकूल है। इस समय का द्वितीय प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन था। यह ब्राह्मण था और विदर्भ का रहने वाला था। कालांतर में इसके बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था और महायान का प्रबल प्रचारक बन गया था। इसने अपने प्रज्ञा पारमिता सूत्र में सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया था। यह शून्यवाद का प्रचारक था। कुछ विद्वानों का मत है कि इसके शून्यवाद ने शंकराचार्य के मायावाद को प्रभावित किया। वसुमित्र भी एक प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक था। इसी की अध्यक्षता में कनिष्क के समय की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसने बौद्ध धर्म ग्रंथों के ऊपर विद्यापूर्ण टीकाएं लिखी थी। इस युग के दूसरे विद्वान पार्श्वनाथ और संरक्षक थे। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। इसका ग्रंथ चरक संहिता भारतीय वेद की एक अमूल निधि है। इस प्रकार यह काल संस्कृत साहित्य के संवर्धन का काल था। काव्य, नाटक, दर्शन शास्त्र और आयुर्वेद के उपयुक्त ग्रंथों ने संस्कृत की बड़ी उन्नति की। महान निर्माता कनिष्क को निर्माण कार्य में भी विशेष रुचि थी। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा और 13 मंजिल का एक टावर बनवाया था। उसके ऊपर लोहे का एक बड़ा छत्र स्थापित किया था। 6वीं शताब्दी में आने वाले चीनी यात्री सांगयुन ने लिखा है कि उसने समय तक टावर 3 बार आग से नष्ट हो चुका था और 3 बार धर्मात्मा राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करा दिया था। इसी के समय एक सुंदर बौद्ध विहार का निर्माण किया गया था। 9वीं तथा 10वीं शताब्दी का यह बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था। मगध का राजकुमार वीरसेन इसी बौद्ध विहार में प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। फाइयान और ह्यूएनसांग ने इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। 11वीं शताब्दी में अलवरुनी इसका कनिष्क चैत्य के नाम से उल्लेख किया था। इसके अतिरिक्त कनिष्क ने तक्षशिला में शिरकप नामक स्थान पर एक नगर की और पुरुषपुर में कनिष्कपुर नामक एक दूसरे नगर की स्थापना की थी। उसने पेशावर, तक्षशिला, मथुरा आदि नगरों को सुसज्जित कराया। इस समय से नगर के साम्राज्य के प्रसिद्ध कला केंद्र थे। गांधार कला, कनिष्क के समय के पूर्व हीनयान बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण न होता था। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करना धर्म विरोध समझा जाता था। जब कभी महात्मा बुद्ध के अस्तित्व को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती थी तो उनके घोड़े, छत्र, सिंहासन और चरण पादुका से प्रदर्शित कर दिया जाता था। परंतु कनिष्क के समय तक आते आते महायान धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। उसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का होना प्रारंभ हो गया। महायान कला को प्रोत्साहन दिया। महायान ने कला को प्रोत्साहन दिया। कनिष्क के समय में महात्मा बुद्ध की बहुत संख्या मूर्तियों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। इस समय जो मूर्तियां बनी उनमें से अधिकांश मूर्तियों में स्वदेशी और विदेशी प्रभावों का सम्मिश्रण है। इस प्रभाव के अंतर्गत बनी हुई मूर्तियां अधिकांशतः गांधार प्रदेश में पाई गई हैं। इसलिए इस प्रदेश की कला को गांधार कला का नाम दिया गया है। ये मूर्तियां स्लेटी पत्थर की हैं। बाद की मूर्तियां लाइम, प्लास्टर, टुको और धातु की भी हैं। इन मूर्तियों का विषय बौद्ध अथवा भारतीय है, परंतु इसके निर्माण में यूनानी शैली का प्रयोग किया गया है। इसलिए गांधार कला को इंडो यूनानी बौद्ध कला भी कहते हैं। इस काल के कलाकारों ने मूर्तियों के द्वारा महात्मा बुद्ध के जीवन जीवन की विविध घटनाओं को प्रदर्शित किया है। सारांशतः गांधार कलाकारों ने शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर अधिक बल दिया है। इनकी कृतियों में आध्यात्मिकता भावता का अभाव है। इन कारणों से गांधार कला भारत में बहुत लोकप्रिय न हो सकी। पौधा गांधार कला के अंतर्गत बनी हुई बुद्ध मूर्तियों के शीर्ष केशयुक्त अथवा अलंकृत दिखाए गए हैं। इनके निर्माता कलाकारों को बौद्ध यह भी ध्यान न रहा कि संन्यास ग्रहण करने के समय महात्मा बुद्ध ने शीश मुड़वा लिया था। इसी प्रकार के दोष बोधिसत्व की मूर्तियों से भी हैं। गांधार कला के अंतर्गत निर्मित बुद्ध प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध के मुख पर कहीं पर भी आध्यात्मिकता अथवा विश्व कल्याण की भावना प्रकट नहीं हुई है। उनकी मुख मुद्रा या तो अत्यंत कठोर बन गई है या स्त्री सुलभ मुद्रा। इनके शरीर के ऊपर भी बौद्ध व्यर्थ का आडंबर दिखाया गया है। परिणाम यह हुआ कि गांधार मूर्तियों में न तो व्यक्तित्व की सत्यता है और न भावनाओं की अभिव्यक्ति। बौद्धावे मशीन की सी बनी मालूम होती है। गांधार कला के अंतर्गत बने स्तूपों की प्रमुख विशेषता है उनकी ऊंचाई। स्तूपों को अधिक ऊंचा आकार देने के निर्मित कलाकारों ने अब उसका निर्माण कृत्रिम चबूतरों के ऊपर करना प्रारंभ किया और अधिक ऊंचाई देने के लिए कलाकारों ने स्तूपों के ऊपर एक छत्र लगाना भी प्रारंभ किया। मथुरा कला। गांधार प्रदेश की भांति मथुरा प्रदेश भी इस समय कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला पर गांधार कला का प्रभाव था अथवा नहीं, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश पाश्चात्य विद्वान अभी तक ये विश्वास करते थे कि मथुरी कला का उदय गांधार कला के प्रभाव के अंतर्गत हुआ था, परंतु अब सूक्ष्म अध्ययन के परिणाम स्वरूप अधिकांश विद्वान स्वीकार करने लगे हैं कि मथुरा के प्राचीनतम कलाकृतियां गांधार कला के उदय काल के पूर्व की हैं। वस्तुतः मथुरा कला का उदय साथी सारनाथ और बरहूत की स्वदेशी कला के सूत्र को लेकर पड़ा था। फोगेल महोदय भी इस मत से सहमत हैं। मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, ये मूर्तियां लाल बलुए की पत्थर की हैं। दूसरा, गांधार कला की भांति मथुरा कला के अंतर्गत भी महात्मा बुद्ध के मुख के चारों ओर प्रभात मंडल है। तीसरा, महात्मा बुद्ध प्राय मुंडित शीश है, उनके मुख पर मूछें भी नहीं है। चौथा, प्रतिमाओं के विशालता भौतिकवादिता और धन गाथा है, इसमें आध्यात्मिकता नहीं है। पांचवा, मूर्तियां कभी कभी सिंहासन पर दिखाई गई हैं। महात्मा बुद्ध को मूर्तियां प्राय खड़ी हुई हैं। छठवां, मूर्तियां बहुधा एकांशिक हैं, अर्थात उनका एक कंधा ढका है और दूसरा खुला। सातवां, मथुरा की यक्ष यक्षिणी आदि की प्रतिमाओं में कामुकता का प्रदर्शन अधिक किया गया है। आठवां, मूर्तियों के वस्त्र प्राय शरीर में चिपटे हुए हैं। साधारण मूर्तियां दो वस्त्र धारण किए हैं, उध्रवस्त्र और अधोवस्त्र। व्यापारिक उन्नति। कनिष्क के साम्राज्य में पश्चिमोत्तर प्रदेश और मध्य एशिया के प्रदेश सम्मिलित थे। परिणाम यह हुआ कि स्थानीय मार्गों के द्वारा भारत वर्ष ईरान मध्य एशिया और चीन आदि देशों का संपर्क संबंध स्थापित हो गया। परिणामतः भारतवर्ष विदेशों का सांस्कृतिक आदान प्रदान तो हुआ ही, इसके साथ ही साथ भारतीय व्यापार की भी भारी अभ्युन्नति हुई। उपयुक्त देशों के अतिरिक्त भारतवर्ष और रोम साम्राज्य के बीच भी भारी व्यापार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष के वस्त्र आभूषण और प्रसाधन के उपकरण बहुत बड़ी संख्या में रोम साम्राज्य में पहुंचने लगे। इनके बदले में रोम साम्राज्य में लाखों रुपए का सोना प्रतिवर्ष भारत आने लगा। प्लिनी नामक क्षेत्र लेखक ने रोम निवासियों को यह कहकर कटु आलोचना की कि वे विलास सामग्री खरीदने में भारतवर्ष को इतना अधिक सुवर्ण दे रहे हैं जिनसे उनके देश को भारी आर्थिक क्षति सहनी पड़ रही है। कनिष्क की मृत्यु ऐसी जनश्रुति है कि कनिष्क के अनवरत युद्धों में क्षुब्ध होकर उसके सेनापतियों ने उसकी हत्या कर दी। कनिष्क ने 23 वर्ष अथवा 48 वर्ष तक राज्य किया। कनिष्क के उत्तराधिकारी कनिष्क के पश्चात कुषाण वंश में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो उसके विशाल साम्राज्य को अक्षय रख सकता। अतः कनिष्क की मृत्यु के पश्चात ही कुषाण साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई। कनिष्क का उत्तराधिकारी वाशिष्क था। एक लेख मथुरा में और दूसरा सांची में प्राप्त हुआ है। प्रथम लेख 24 और द्वितीय 28 है। दोनों ही तिथियां सख सम्मत की हैं, परंतु उसकी मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई हैं। राज तरंगड़ी में एक जुष्क का उल्लेख है जिसने जुष्पुर नामक नगर की स्थापना की थी। संभवतः जुष्क वाशिष्क ही था। वाशिष्क के पश्चात विष्क सिंहासन पर बैठा। यह अधिक शक्तिशाली राजा प्रतीत होता है। इसके अनेक सिक्के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गया अभिलेख से प्रकट होता है कि इसका राज्य बिहार तक था। मथुरा में इसकी मुद्राएं मिली हैं। राज तरंगड़ी के अनुसार इसने काश्मीर में विशकपुर नामक नगर की स्थापना की थी। वारदक अभिलेख से काबुल प्रदेश पर उसका आधिपत्य सिद्ध होता है, परंतु कोई भी साक्ष्य ऐसा कहीं मिला है जिससे सिंध के ऊपर उसका आधिपत्य सिद्ध हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः रुद्रदामन ने सिंध प्रदेश कुषाण साम्राज्य से छीन लिया था। विश्व की तिथियां 26 से 60 तक मिली है। इससे प्रकट होता है कि कम से कम उसने 138 तक राज्य किया था। संभवतः वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने मथुरा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। उसकी मुद्राओं पर ईरानी, यूनानी और भारतीय देवी देवताओं के चित्र हैं। भारतीय देवी देवताओं में स्कंद, विष्णु, शाक, गणेश और विष्णु विशेष उल्लेखनीय है। ये मुद्राएं उनकी धार्मिक सहिष्णुता की ओर संकेत करती हैं। अधिकांश मुद्राएं बड़ी ही सुडोल और कलात्मक हैं। आर अभिलेख में एक कनिष्क का उल्लेख है। उसकी तिथि 41 है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह कनिष्क कौन था। लूडस फ्लिक्ट और स्टेन कोनो आदि विद्वानों का मत था कि यह कनिष्क प्रथम से भिन्न था, अतः इसे कनिष्क द्वितीय की संज्ञा दी गई है। संभव है कि इसे हृष्क के साथ राज्य किया हो। हृष्क के पश्चात वासुदेव प्रथम कुषाण साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी तिथियां 67 से 98 तक मिलती हैं। इससे प्रकट होता है कि कम से कम इसमें 176 ईस्वी तक राज्य किया। इसके सिक्के और लेख एकमात्र पंजाब और उत्तर प्रदेश में ही मिले हैं। इससे प्रकट होता है कि उसके समय तक अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध व मालवा के प्रदेश कुषाण साम्राज्य से निकल चुके थे। इस प्रकार वह एकमात्र भारतीय राज्य का ही शासक रह गया था। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी उसका पूर्णतः भारतीयकरण हो गया था। यह सत्य उसके नाम से ही प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त उसकी मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां खुदी हुई हैं। इससे प्रकट होता है वह शैव था। वासुदेव की मृत्यु के पश्चात कुषाण वंश की अवनति की गति तीव्रतर हो गई। एक एक करके उसके अधीन प्रदेश स्वतंत्र होने लगे। भारत के पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रदेशों में शकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। उत्तरी भारत में नाग, महर्षियों, यौधेयों और मालवों आदि वंशों की शक्ति बढ़ी। इनके विस्तार के परिणाम स्वरूप फिर कुषाण राज्य का पूर्णतः विलोप हो गया। कुषाण वंश के पतन के अनेक कारण थे। पहला, गुप्तों का उदय। डॉक्टर राखल दास बनर्जी के मतानुसार गुप्तों के उदय के कारण कुषाणों का पतन हुआ। इस नवीन वंश ने ही कुषाणों को मगध से निकाला था, परंतु यह मत असंगत है। गुप्तों का उदय लगभग 275 ईस्वी में हुआ, जबकि कुषाणों के हाथ से प्राय संपूर्ण उत्तरी भारत 176 ईस्वी के आसपास ही निकल चुका था। वासुदेव प्रथम को ही कुषाणों का अंतिम महत्वपूर्ण राजा कहा जा सकता है। दूसरा, निर्बल उत्तराधिकारी। अशिष्क और हविष्क के पश्चात कुषाण वंश में कोई भी ऐसा शासक न हुआ जो कुषाण राज्य को संभाल सकता। हविष्क के पश्चात वासुदेव प्रथम राजा हुआ। इसके समय कुषाण राज्य केवल पंजाब और उत्तर प्रदेश में सीमित था। उसका उत्तराधिकारी कनिष्क तृतीय था। इसके शासन काल में उत्तर प्रदेश भी स्वतंत्र हो गया और कुषाण राज्य केवल पंजाब में रहा। अंतिम कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समय में पंजाब भी कुषाण वंश के हाथ से निकल गया। तीसरा, चीन और पार्थिया। कुषाण साम्राज्य से चीन और पार्थिया की शत्रुता थी। इनसे युद्ध करने के कारण कुषाण साम्राज्य की शक्ति का बड़ा व्यय हुआ होगा। चौथा, जुवन जाति। इन जाति ने कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण किए और उसे बड़ी क्षति पहुंचाई। पांचवा, शशनियन वंश। ईरान में शशनियन वंश का उदय हुआ 238 ईस्वी के लगभग। इस वंश के राजा आर्देशीर प्रथम ने वासुदेव द्वितीय के बैक्ट्रिया छीन लिया। 284 ईस्वी के लगभग एक अन्य शशनियन नरेश बरहक द्वितीय ने अपने राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, सीमा प्रांत, सिस्तान और सिंध तक किया, परंतु इस बात का निश्चित प्रमाण नहीं है कि शशनियन वंश ने पंजाब से भी कुषाणों को निकाला था। छठवां, स्वदेशी जातियां। मध्य प्रदेश और पंजाब के कुषाणों को निकालने का श्रेय बहुत कुछ भारतीय जातियों को दिया जाता है। पार्शिव नाग डॉक्टर जसवाल ने यह मत प्रतिपादित किया था कि पंजाब और मध्य प्रदेश से कुषाणों को निकालने का कार्य भारशिव नागों ने किया था। इनका एक प्रमुख राजा वीरसेन था। इसने कांतिपुर, मथुरा और पद्मावती में अपने वंश की स्थापना की और पंजाब से कुषाणों को भगाया, जिससे वे शेषियन नरेश शाहपुर प्रथम की शरण में गए। कुषाणों के विरुद्ध अपनी विजय के उपलक्ष्य में भारशिव नागों ने वाराणसी में 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिससे वह स्थान आज भी 10 अश्वमेध घाट के नाम से प्रख्यात है। परंतु डॉक्टर अल्टेकर ने डॉक्टर जायसवाल के ब्यौरे का खंडन किया है। पहला, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वीरसेन ने कांतिपुर, मथुरा और पद्मावती में नाग राज्य की स्थापना की। दूसरा, वीरसेन का पंजाब में कोई संबंध नहीं था व उसकी मुद्राएं नहीं मिलती। तीसरा, बिना किसी सैनिक विजय के भी अश्वमेध यज्ञ किए जा सकते थे। चौथा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कुषाणों ने भारशिव नागों के विरुद्ध शशनियन नरेश शाहपुर प्रथम से सहायता मांगी। फिर भी यह निर्विवाद है कि भारशिव नाग तत्कालीन भारत का एक महत्वपूर्ण वंश था। अतः संभव है कि उसने भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। अभाग्य से इस विषय में कोई निश्चित ब्यौरा नहीं मिलता। योधेय या जाति यमुना के पश्चिम में रहती थी और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने कुषाणों को निकालकर यमुना और सतलज के बीच प्रदेश का स्वतंत्र कराया, बीच के प्रदेशों को स्वतंत्र कराया। इस मत के पक्ष में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। पहला, अंतिम कुषाण नरेशों, कनिष्क तिथि और वासुदेव तिथि की मुद्राएं सतलज और यमुना के बीच में नहीं मिलती, परंतु इसी प्रदेश में योधियों की मुद्राएं मिलती हैं। दूसरा, योधियों की मुद्राएं कुषाणों की मुद्राओं से मिलती जुलती हैं। तीसरा, इन मुद्राओं पर योधेय गणश्य जय लिखा मिलता है। इन पर देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की मूर्ति भी मिलती है। पुनिंद यह जाति सतलज और व्यास के बीच रहती थी। इसने योद्धियों की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता की होगी। इसकी मुद्राएं योद्धे मुद्राओं से मिलती जुलती हैं। आर्जुनायन यह जाति आधुनिक जयपुर आगरा प्रदेश में रहती थी। अपने पड़ोस में चलते हुए स्वतंत्रता संग्राम से यह पृथक नहीं रह सकती थी। कुछ औधे मुद्राओं के ऊपर द्वि और त्रि शब्द मिलते हैं। इसमें डॉटल टेर ने अनुमान किया है कि योद्धियों ने कुषाणों के विरुद्ध एक संघ बनाया था जिसमें कुनिंद और आर्जुनायन नामक पड़ोसी जातियों को सम्मिलित किया था। मालव यह जाति अजमेर टाक मेवाड़ प्रदेश में रहती थी। नादसा यूप अभिलेख में मालव श्री सोम का उल्लेख जिसमें 225 ईस्वी के लगभग एक यज्ञ किया था। संभव है कि यह यज्ञ कुषाणों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किया गया हो। इसके अतिरिक्त बघेल खंड के मघ वंश और कौशाम्बी अयोध्या पंचाल और मथुरा के मित्र वंश ने भी कुषाणों को उत्तर भारत से भगाने में योग दिया होगा।